Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए बशारत के ताल्लुक से एक पैगाम देखेंगे और जो वक्त मुझे दिया गया मैं कोशिश करूंगा उसी के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म कर सकूं। खुदा डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में लोगों को अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए बुलाता है। और जब खुदा आप पे अपना हाथ रखता है और आपको खिदमत के लिए खुदा बुलाता है तो वो दो काम आपकी ज़िंदगी में करता है। पहली चीज़, वो आपको खिदमत देता है और दूसरी बात, वो आपकी खिदमत के लिए दरवाजे खोलता है। और जो दरवाजे खुदावंद खोलता है कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। मसीह के बदन में खुदा ने हर एक के लिए एक खिदमत रखी है, जिसे हम बिलीवर्स मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो स्पेशल मिनिस्ट्रीज में बुलाए जाते हैं या फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में बुलाए जाते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं रसूल, नबी, उस्ताद, चरवाहे, मुबशर। तो जब खुदावंद आपको खिदमत के लिए बुलाता है तो वो आपके लिए दरवाजे भी खोलता है। लेकिन इस चीज का क्या एक निशान है कि मैं खिदमत के लिए बुलाया गया? एक टेस्ट जो आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि जब आप खिदमत करते हैं तो बहुत से लोग आपकी मुखालफत करेंगे, बहुत से लोग तनकीद करेंगे आप में, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में सब्र है तो ये इस चीज का टेस्ट है कि आप खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। आप फिर सारी बातों को, मुखालफत को, क्रिटिसिज्म को, प्रॉब्लम्स को खुदावंद के हाथों में छोड़ दें और खुदावंद आपको कामयाबी और कामरानी बख्शेगा। और इस ताल्लुक से पहला पत्रस 5 उसकी 6 आयत आप नोट कर सकते हैं।
बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे।
लेकिन आज हम कुजात की किताब में से, उसके 5 में से अपने लिए और चर्च के लिए एक इवेंजलिज्म के पैटर्न को देखेंगे। खुदा ने मुल्क कनान में जब बनी इसराइल जाके उन्होंने ड्वेल किया तो वहां पे काजी खड़े किए, और मूसा से लेकर सैमुअल तक काजियों का दौर था और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट काजी आए जिन्होंने खुदावंद के लोगों को दुश्मनों के खिलाफ मजबूत किया, इनकरेज किया, उनकी हेल्प की। और जब भी हमलावर फोर्सेस बन इसराइल के अगेंस्ट आती तो खुदा उनके लिए काजी खड़े करता, जैसे दबोरा है, जदाउन है, सैमसन है, उथैनियल है, बेशुमार काजी आए और खुदावन ने उनके वसीले अपनी कौम को फतह बख्शी। सो उनमें से दबोरा भी एक नबिया थी और खुदा ने उसको अपने इस टाइम पीरियड में काजी के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि जो कनानी बादशाह जाबिन ने बनी इसराइल पर हमला किया, उस पर हमला आवर हुआ और सिसरा को उसने भेजा फौजी जर्नैल के तौर पे बनी इसराइल के खिलाफ, तो किस तौर से दबोरा ने बराक के साथ मिलकर उसका मुकाबला किया। और इसलिए मैं ये डेबरा की और बराक की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि एवेंजलिज्म भी एक तरह से जंग है। बशारत जो है महज पैगाम देना ही नहीं बल्कि एक रूहानी जंग है और हम दुश्मन से खुदा के लोगों को छुड़ा के रिलीज करके खुदा की बादशाहत में लेके आते हैं। और आज इस पस मंजर में हम एवेंजलिज्म को स्टडी करेंगे कि ये एक जंग है और दुश्मन ने जो खुदा के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है उनको हमने छुड़ा के तो खुदा की बादशाहत में लेके आना है। सो दबोरा अपने टाइम पे खड़ी की गई और खुदावन का मस्सा और खुदावन का रूह जो था वो दबोरा की जिंदगी पे ठहरा हुआ था और खुदा ने उसे खड़ा किया ताकि वो इबलीस के या दुश्मन के कामों को निस्त करे। और इसी तौर से खुदा आज अपने खादमों को और मुबशरों को खड़ा करता है कि वो इबलीस के कामों को बर्बाद करें और खुदा के लोगों को आजाद करें। सो इससे पहले कि दबोरा उस जंग में जाती, दबोरा खुदावन के लिए आगे बढ़ती, उसने बनी इसराइल के सारे कबीलों को एक लेटर भेजा और उसने कहा कि हम जंग में हैं, हम खतरे में हैं, हमने खिदमत के लिए जाना है और तुम हमारी मदद के लिए आओ। और यही चैलेंज और यही कमीशन आज खुदा ने कलीसिया को दिया है कि हम इबलीस के साथ रूहानी जंग में हैं और खुदा के लोग मदद के लिए आए। बिशारत सिर्फ मुबशर नहीं करता है बल्कि हर ईमानदार को बिशारत करनी है। और आज हमारे चर्च के साथ ट्रेजडी ये है कि हम ये सोचते हैं कि बिशारत करना सिर्फ मुबशर का काम है या पास्टर का काम है। जी नहीं, बल्कि हर ईमानदार का काम है कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में रूहों को बचाए। तो हम इस पांचवें बाब में देखते हैं कुछ जात के कि कुछ कबीले दबोरा की मदद के लिए आए और कुछ कबीले उसकी मदद के लिए नहीं आए। और यही ट्रेजेडी आज चर्च के साथ है। कुछ लोग अपने पास्टर्स की, मुबशरों की मदद करते हैं कि वो बिशारत कर सकें और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो महज कुर्सियों पर बैठ के सीटों को गर्म करते हैं और इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे ही चर्च में, और कुछ लोग हेल्प करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और हम मदद ना करने के बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं। फलां में ये खराबी है, फलां को एड आती है, फलां ने ये कर लिया है, फलां वो पैसे खा गया है। हम खुदा के काम ना करने के लिए बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं और काम करने के लिए हमें कोई भी बहाना नहीं मिलता है। यही प्रॉब्लम उस वक्त बनी इसराइल में थी और यही प्रॉब्लम आज मेरे लोगों में है कि वो खुदा के जो काम है और जो मिशन है और जो खुदा का दुश्मन है उसके अगेंस्ट खिदमत के लिए नहीं आते हैं। कलीसिया भी एक फौज है, जैसे बनी इसराइल की फौज थी। 12 कबीले जंग के लिए बुलाए गए, दबोरा ने उनको कॉल किया। चर्च भी एक आर्मी है, लेकिन अगर एक फौज के आधे सिपाही या 90% जो लोग हैं वो जंग ना करें तो वो फौज कैसे जीत सकती है। और आज इसलिए पाकिस्तान में खुदा की फौज जो है ये कमजोर है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जंग में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। दबोरा ने सिसरा के खिलाफ इस जंग में फतह हासिल की और इस फतह के बाद वो जजेस टूर पे निकली, अपने सफर में निकली और वो सारे कबीलों के पास गई और जो आए जंग के लिए और जो नहीं आए दबोरा सब के पास गई और उसने सबको या तो उसने बरकत दी, एनकरेज किया, या उसने क्वेश्चन किया, तुम क्यों मेरी मदद के लिए नहीं आए। और हम पढ़ेंगे पांचवा बाप और उसकी 17वीं आयत।
जिलाद यर्दन के पार रहा और दान किश्तियों में क्यों रह गया? आशर समुद्र के बंदर के पास ही बैठा रहा और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया।
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दान से दबोरा ने क्वेश्चन किया और आशर को भी उसने कहा, आशर के कबीले को भी उसने कहा, लेकिन हम इसमें इस स्टडी में आज सिर्फ दान को देखेंगे। और उसने कहा दान कश्तियों में क्यों रह गया, क्यों दान जंग करने के लिए नहीं आया। दबोरा जो थी वो दान के पास गई और डेनाइट से उसने ये क्वेश्चन किया, आए दान मैंने तुझे और तेरे कबीले को जंग करने के लिए बुलाया कि तू दुश्मन के खिलाफ मेरी मदद कर, तू खुदा के काम में मेरी मदद कर, लेकिन दान क्यों कश्तियों पर रह गया। और आगे क्वेश्चन मार्क है, होली स्पिरिट ने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा दिया। और आज बहुत सी जिंदगियों में क्वेश्चन मार्क है, आप क्यों खुदा के काम में उसके लोगों की मदद नहीं करते हैं, आप क्यों खुदा के मिशन में अपने चर्च के मदद आप नहीं करते हैं। ये दान के लोग क्या थे? ये शिप मर्चेंट्स थे और इनके बड़े बड़े जहाज थे और जहाज पे उन्होंने अपने बाजार लगाए होते थे और वो डिफरेंट शहरों में जाते और लोग दान की कश्तियों पर आते और वो सौदा खरीदते बेचते लेन देन करते और दान का ये बिजनेस था। अब दबोरा ने एक मैसेंजर को, एक पैगाम रसान को भेजा और वो उसके हाथ का एक लेटर लिए हुए दान के पास पहुंचा और दान ने उसको दूर से उस, हम तसव्वुर करते हैं, उस मैसेंजर को आते हुए देखा और जब वो नजदीक पहुंचा तो उसने उसको दबोरा का लेटर दिया कि तुझे कॉल किया गया है कि खुदा के लोग मुसीबत में हैं, दबोरा को तेरी जरूरत है, तू आ और हमारे साथ मिलकर जंग कर। और दान वो लेटर पढ़ के बड़ा जज्बाती होता है और वो सोचता है मुझे अपने भाइयों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन फिर वो अपनी कश्तियों पे निगाह दौड़ाता है और फिर वो देखता है कि आज का सारा प्रॉफिट जो है, अभी ये मैंने पैसे भी नहीं गिने और अभी मैंने बहुत सा काम करना है, तो मैं कैसे जंग के लिए जा सकता हूं। और फिर उसके जहन में ख्याल आया कि ये जंग तो कनानियों के खिलाफ है और जो कनानी हैं वो तो हमारे ऑलरेडी बड़ा अच्छा हमें बिजनेस देते हैं, मैं बहुत पैसा वहां से कमाता हूं, तो अगर मैं ही जंग में चला गया और मैंने कनानियों के खिलाफ ही जंग की तो हमारा बिजनेस जो है ये सारा ठप हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। और दान जो है वो एक ख्याल में पड़ जाता है, गहरी सोचें उसे घेर लेती हैं। और जैसे दबोरा ने दान को वो लेटर भेजा कि तू हमारे साथ आके खिदमत में हमारी मदद कर, ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुदस के वसीले से आपको खत भेजा है, हुक्म आजम भेजा है कि आप उसकी मदद करें कि जब तक पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी नहीं हो जाती है दुनिया का खात्मा नहीं होगा। लेकिन जैसे दान ने दबोरा की बात को नजरअंदाज कर दिया, आज बहुत से ईमानदार पाक रूह की इस कॉलिंग को रद्द किए हुए हैं कि उन्होंने जाकर अंजील की खुशखबरी को सुनाना है। दान जो था वो लेटर पढ़ के बड़ा डीपली मूव हुआ और वो मदद करना चाहता था लेकिन उसने नहीं की। आज कलीसिया में बहुत से लोग बोझ रखते हैं, मदद करना चाहते हैं इवेंजेलिज्म के, लेकिन वो नहीं करते हैं। और दबोरा ने दान से ये क्वेश्चन किया, दान कश्तियों पे क्यों रह गया, क्यों वो मेरी मदद के लिए नहीं आया, क्यों वो खुदा के काम के लिए नहीं आया, क्यों वो बिशारत के लिए नहीं आया और वो अपनी कश्तियों पे ही क्यों रह गया। उसने अपने दान ने अपने भाइयों की शायद आवाज सुनी होगी, बनी इसराइल जंग कर रहे हैं और दान को आवाज आ रही है कि फाइट हो रही है। और आज बहुत से लोग कलीसिया में गुनागारों की आवाज सुनते हैं, बीमार लोगों की आवाज सुनते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि उन्हें हेल्प करनी चाहिए लेकिन वो मदद के लिए नहीं जाते हैं। फिर अचानक और सोचें दान के ख्याल में आ गई और उसके जहन में आया कि मेरा बिजनेस है, मेरी फैमिली है, मेरी शिप्स हैं, मेरी शॉप्स हैं, मैं ये सारा काम छोड़ के कैसे खिदमत में जा सकता हूं, मैं कैसे दबोरा की मदद कर सकता हूं। और शायद उसने जो उस दिन उसका मनी बॉक्स था, थोड़े से पैसे निकाले और उसने थैली में डाले और उसने मैसेंजर को दे दिए कि जा दबोरा से कहना कि हम भी तेरे साथ इस जंग में, मैं दुआ में तुझे बैकअप करूंगा। और यही हाल आज चर्च का है। बहुत से लोग खुदावंद का नाम लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद का काम करते हैं। दान ने उस औरत को अकेला ही जंग करने के लिए छोड़ दिया और खुद वो कश्ती में बैठा रह गया। आज बहुत से जो कलीसिया के लोग हैं वो खादमों को अकेला छोड़ देते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहते हैं और वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। वो खादमों से कहते हैं हम आपके साथ हैं, फिक्र ना करें, हम रूह में आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन वो कोई और काम जो है खिदमत के लिए और एवेंजेलिज्म के लिए नहीं करना चाहते हैं। जब वो फैसले के पॉइंट पे पहुंचते हैं तो बहुत से सवाल जहन में आ जाते हैं, मेरा मुस्तकबिल उसका क्या होगा, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने अपनी जॉब करनी है, मैंने स्टडीज करनी है। और वो लोग दान की तरह फैसला नहीं कर पाते हैं कि मैं दबोरा की मदद के लिए फील्ड में जाऊंगा, मैं दुनिया के खेतों में जाऊंगा और मैं खुदावंद की हेल्प करूंगा। और वो अपनी कश्ती पर ही सवार रह गया। और वो कश्ती किस चीज की थी? खुद गर्जी की कश्ती, वो अपने लालच की कश्ती पे, और वो खुद तरसी के शिप में, शिप ऑफ ग्रीड, शिप ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और शिप ऑफ लव में सवार रह गया और वो दबोरा की हेल्प के लिए नहीं गया। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं चर्च में जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है लेकिन आप खिदमत नहीं कर रहे हैं। आप कुर्सियों में बैठे हैं, आप घरों में बैठे हैं, आप चर्चेस में बैठे हैं, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे, आप अपनी कश्ती नहीं छोड़ रहे, लेकिन याद रखिए एक दिन आप यीशु के तख्त अदालत के सामने हाजिर होंगे और पाक रूह आपसे सवाल करेगा, दान कश्तियों में क्यों रह गया, दान क्यों मेरी मदद के लिए नहीं आया, दान क्यों अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, अपना बिजनेस छोड़ने के लिए, अपना कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और उस वक्त बहुत से लोगों के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, फिर आप शर्मिंदा होंगे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर हम इसके बाद देखते हैं 18वीं आयत में कि दबोरा जबलून और नफ्ताली के पास जाती है और वो उनके बारे में अपने कमेंट्स देती है और वो कहती है जबलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसा ही निकला। फिर हम देखते हैं तसव्वुर में कि जबलून का कबीला है और नफ्ताली का कबीला है और वो खेतों में सारा दिन बड़े मसरूफ रहे और एक पैगाम रसाम जो है वो जबलून और वो नफ्ताली के पास पहुंचता है और उसने उससे कहा कि दबोरा तुम्हें जंग के लिए बुलाती है। और फौरन जबलून और नफ्ताली ने फैसला किया हम जंग करने के लिए जाएंगे। तमाम दिन वो मेहनत करते रहे हैं, बड़ी धूप में, गर्मी में और मुश्किल में सारा दिन उन्होंने लेबर किया है लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। दबोरा ने हमें बुलाया है, हम उसकी मदद के लिए जाएंगे। यीशु ने हमें बुलाया है और हम उसकी खिदमत के लिए जाएंगे। उन्होंने अपनी जो खेती बाड़ी की चीजें थी वो छोड़ी और अपनी तलवारें ली और वो दबोरा के साथ जंग करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, उन्होंने अपने खेतों को छोड़ा, उन्होंने अपनी सारी मसरूफियत को छोड़ा और वो खुदावंद की खिदमत के लिए वो निकल खड़े हुए। और यीशु ने कहा जो कोई तुम में से अपना घर बार और अपनी बीवी बच्चे और अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता है। जबलून और नफ्ताली बड़े खुशकिस्मत लोग थे और दबोरा ने कहा रूह कुदस के वसीले से जबलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी कि हम जाएंगे और खुदावन के लिए लड़ेंगे। नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मुकामों पर ऐसा ही निकला, ऊंचे पहाड़ों पर। दबोरा कहती है नफ्ताली भी मेरे साथ जंग करने के लिए गया। लेकिन दान में और जबलून में एक मेजर डिफरेंस है। दान ने दौलत बनाई और जबलून और नफ्ताली ने तारीख बना दी, बनी इसराइल की हिस्ट्री बना दी। आज हम में से बहुत से लोग घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, लेकिन जबलून और नफ्ताली ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने खुदावन के लिए हिस्ट्री बना दी, बनी इसराइल के लिए जंग की और उन्होंने खुदावन के लिए फतह को कायम किया। दान ने कोई कुर्बानी नहीं दी, दान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, दान को कुछ भी नहीं मिला सवाए शर्मिंदगी के। लेकिन जबलून और नफ्ताली ये खुदावन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने हिस्ट्री बना दी और उनके बारे में हिस्ट्री में लिख दिया गया कि जबलून जान पर खेलने वाले लोग थे और नफ्ताली के लोग कैसे थे, वो खुदावन के लिए ऊंचे ऊंचे मुकामों पे लड़े। आज चर्च को पैसे बचाने की जरूरत नहीं, आज चर्च को रूहें बचाने की जरूरत है। अफसोस की बात है अगर आपके चर्च के पास बैंक बैलेंस है, क्योंकि चर्च का काम पैसे बचाना नहीं, चर्च का काम रूहें बचाना। ईमानदारों का काम पैसे बचाना नहीं, ईमानदारों का काम रूहें बचाना है। अपने लिए जमीन पर खजाना जमा ना करो जहां कीड़ा लगता है और जंग खराब जंग लग जाता है, अपने लिए आसमान पर पैसा जमा करो। अजीजो, हमारे पास अब्दियत का पैगाम है, लेकिन इस पैगाम को देने के लिए हमारे पास अब्दियत नहीं है। आज ही जब तक हम जिंदा हैं हम मुनादी कर सकते हैं। अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, अब क्यों नहीं निकल रहे? जी हां, आपके पास अब्दी पैगाम है, लेकिन उसको देने के लिए आपके पास अब्दियत नहीं है। आप टाइम की कैद में हैं उस पैगाम को देने के लिए। हम अपनी नस्ल को अपनी नस्ल में ही बचा सकते हैं। आज अगर हमारी नस्ल को निजात पानी है तो आने वाली नस्ल या पिछली नस्ल इस नस्ल को नहीं बचा सकती है। जरूर है कि यह जेनरेशन इसी जेनरेशन में बचाई जाए, वरना यह मौत की राहों में जहन्नम में चली जाएगी। दान कश्तियों में क्यों रह गया? और जब जंग खत्म हुई, दबोरा ने फतह हासिल की, वो अपने घोड़े पे सवार हुई अपनी कंपनी के साथ, वो दान के सामने खड़ी हुई और उसने दान से क्वेश्चन किया, दान कश्तियों पे क्यों रह गया, दान मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आया? और उस वक्त दान अपने डेक पे बैठे हुए, अपने कश्ती पर बैठे हुए पैसे गिन रहा था और जब उसने दबोरा को देखा उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। जब उसने खुदा की अनॉइंटेड बंदी को देखा, उसके क्वेश्चन को सुना, तो उसके हाथ कांपने लगे। वो अपने पैसे भी नहीं गिन सकता था और शर्म के मारे वो अपनी आंखें ऊपर भी ना कर सका कि मैं दबोरा को क्या जवाब दूं। और एक दिन ऐसे ही यीशु मसीह के तख्त अदालत के सामने आपका हाल होगा। वो आपसे पूछेगा, क्यों तो खिदमत के लिए नहीं आया? मैंने तुझे बुलाया था, मैंने तुझे मौका दिया, मैंने तुझे कॉलिंग दी, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोले, मैंने तेरी मदद की, तू क्यों मेरी खिदमत के लिए नहीं आया? और उस वक्त बहुत से लोग शर्म के बायस अपनी आंखें नीचे रखेंगे, वो मेरे यीशु को फेस नहीं कर सकेंगे। उस वक्त आपके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने दुनिया में कोई कुर्बानी नहीं दी बशारत के लिए, खिदमत के लिए। ना आपने खुद कुछ किया, ना आपने अपने पास्टर्स की और मबशरों की मदद की कि वो खुदावंद के लिए कुछ कर सके। और हम तसव्वुर करते हैं, जब दान मरने लगा उसने बहुत सा पैसा जमा किया हुआ था और जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह को लेने के लिए आया तो दान ने कोशिश की कि थोड़ा सा सोना जो मैंने सारी जिंदगी जमा किया है मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मौत के फरिश्ते ने उससे कहा, तूने दुनिया में बहुत सा सोना जमा किया है, अब ये किसी और के काम आएगा, छोड़ दे अपने दौलत यहीं, तो इसको साथ लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि तूने खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं किया। आज भी चर्च में दो किस्म के लोग हैं, दान किस्म के लोग हैं या जबलून किस्म के लोग हैं। आप किसी भी पास्टर को पूछें कि आपके चर्च में दान कौन है और जबलून कौन है, वो फौरन आपको बता सकता है कि ये वो लोग हैं जो मेरी कोई हेल्प नहीं करते हैं, ये दान की किस्म के लोग हैं, ये जबलून की किस्म के लोग हैं, ये हर काम में मेरी मदद करते हैं। प्रेयर मीटिंग है, इवेंजलिज्म है, सेमिनार है, क्रूसेड करना है, कोई काम करना है, ये लोग मेरी मदद करते हैं, क्योंकि ये जबलून की किस्म के लोग हैं। زبلون نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن خداوند کی بادشاہت کو بچا لیا، خداوند کے لوگوں کو بچا لیا، اور دان نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور اس نے اپنا آپ بھی کھو دیا. اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں چرچ میں، بہت سے دان ایسے ہیں جو اپنے گھر کے باغ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ہارویسٹ فیلڈ میں جائیں، وہ خدا کے کھیتوں میں جائیں. ان کے لیے اپنا گھر اور اپنی گاڑیاں اور اپنی چیزیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ خدا کے لیے لوگوں کو بچا سکیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بیشتر لوگ چرچ میں ایسے ہیں جو دان کی قسم کے لوگ ہیں، اور وہ خداوند کی بادشاہ کے لیے، خداوند کے کام کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. عزیزو یاد رکھیں، خدا کے سسٹم میں، خدا کی کنگڈم میں، خدا کے لا میں یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر خدا اپنی آگ بھیجتا ہے تو وہ قربانی پہ بھیجتا ہے، اگر قربانی نہیں ہوگی تو آسمان سے آگ نہیں آئے گی. آج پینٹیکوسٹل لوگ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، وہ گرمی، وہ آگ، وہ گرم جوشی آج میرے لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ میرے لوگ قربانی نہیں دیتے ہیں. جب تک قربانی نہیں ہوگی، جب تک مذبح پہ قربانی نہیں آئے گی، تب تک وہاں پہ پاک روح کی آگ نہیں آئے گی. آج خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خدمت کے لیے قربانی دے سکیں. میں اپنی جاب کو چھوڑ دوں گا، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، خدا میں تیری خدمت کر دوں گا، میں یہ خواہش چھوڑ دوں گا، میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا جو تجھے پسند نہیں، خداوند آج میں سب قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تیری آگ میری زندگی میں آئے. آج خدا کو صرف خادموں کی ضرورت نہیں، آج خدا کو آگ کی ضرورت ہے. کاش آگ لگ چکی ہوتی. پینتیکوسٹ آگ کا نام ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پینٹیکاسٹل کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آگ نہیں، مت اپنے آپ کو پینٹیکاسٹل کہیں، آپ کو آگ کی ضرورت ہے. آج میری کلیسیاؤں کو، آج میرے لوگوں کو پھر سے آگ کی ضرورت ہے. وہ مسا، وہ آگ جو چارلز فینی کی زندگی پہ تھی، آج ویسی آگ خدا کے لوگوں میں آنی چاہیے. وہ آگ جو بینی ہن کی زندگی میں ہے، جو بلی گرہام کی زندگی میں ہے، وہ آپ کی زندگی پہ ہونا چاہیے. Believe me, church, it doesn't matter کہ آپ نے بائبل اسکول کیا یا نہیں کیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، خدا کی خدمت میں ایک ہی چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آگ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کی کلیسیاؤں میں آگ ہونی چاہیے. چارلز فینی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ 19 کے نیچے ہوتا اور وہ گلیوں میں سے گزرتا تو لوگ رو رو کر توبہ کرتے، کوئی کلام نہیں، کوئی میسج نہیں، اس کے گزرنے سے لوگ توبہ کرتے تھے، کیونکہ چارلز فینی کی زندگی میں خداوند کی آگ تھی. پترس کی زندگی میں، پالوس کی زندگی میں خداوند کی آگ تھی، لیکن آگ جو ہے وہ قربانی پہ آتی ہے. آج بہت سے چرچز جو ہیں وہ ان میں دان قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ڈینائٹ سن میں رہتے ہیں، کوئی آگ نہیں، روح کی آگ بھیج دے. بڑے بڑے گیت گاتے ہیں، بڑی غیر زبانوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے گیتوں سے اور آپ کی غیر زبانوں سے بدروحیں نہیں بھاگتی ہیں اور لوگ نجات نہیں پاتے ہیں. یسو کی آگ سے، پاک روح کی آگ سے دشمن کی رسیاں جل جاتی ہیں، گنہگار توبہ کرتے ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، اور میرے لوگ یسو کی بادشاہت میں آتے ہیں. آمین. مجھے آگ دے، مجھے آگ لگا، خدا نے مجھے ایسا خادم بنا جس کے ہردوں میں آگ ہو، میری دعا میں آگ ہو، میری پرستش میں آگ ہو، میرے کلام میں آگ ہو، اور پھر آپ دیکھیں گے روحیں آپ کے وسیلے سے بچیں گی اور خداوند کا کام ہوگا. آمین. آئے دو حوالے پڑھیں، متی 10 باب اس کی 39 آیت اور مکاشفہ 2 باب اس کی 10 آیت.
متی 10 باب اور اس کی 39 آیت. جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा।
जान देने तक वफादार रहे मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कलीसिया को आज इस बात की जरूरत है, वफादार हों खुदावन के साथ, कुर्बानी दें यीशु के लिए, और पाखरू की आग आएगी और इस सारे मुल्क में पाखरू की आग लग जाएगी। खुजराब तक लोग बचाए जाएंगे, पाकिस्तान यीशु के लिए फतह किया जाएगा जब खुदा के लोग आग के साथ बाहर निकलते हैं। आमीन। फिर हम देखते हैं कि दबोरा जो है वो रूबन के पास जाती है, और 15वीं और 16वीं आयत हम देखते हैं कि इसके बारे में वो रूबन के बारे में, रूबन के बारे में दबोरा क्या कहती है। रूबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए, रूबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दत था। और इससे हम एक और व्यू जो है वो पिक्चराइज करते हैं। रूबन के लोग हैं और उन्होंने कहा ठीक है, मैसेंजर से दबोरा का पैगाम हम तक पहुंचा है और ये बड़ी अर्जेंट नीड है, हम जरूर इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने कहा कल जो है हम काउंसिल की मीटिंग कॉल करेंगे और हम दबोरा के सारे इस कॉल पे हम गौर करेंगे। तो काउंसिल की मीटिंग बैठी और उन्होंने सोचा बनी इसराइल जंग में है, सिसरा लड़ने के लिए आया है, दबोरा की जरूरत है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े फैसले किए, दिलों में बड़ा तरद्दत था। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं, हम आज इसका फैसला नहीं करेंगे, कल फिर काउंसिल की मीटिंग होगी। फिर कल काउंसिल आई और फिर मीटिंग हुई और ये मुतफक्का जो था फैसला हुआ हम खुदावन के लिए लड़ने के लिए जाएंगे क्योंकि खुदा को हमारी जरूरत है। लेकिन जब वो मीटिंग खत्म करने लगे तो एक क्वेश्चन राइज हुआ और उन्होंने कहा ठीक है खुदावन को जरूरत है, हमें जाना है, खुदावन की मदद करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो वुमन प्रॉब्लम है। दोबारा हम एक औरत के लीडरशिप के पीछे कैसे जा सकते, हम कैसे रूबन के लोग कहने लगे हम कैसे दबोरा के लिए जाके जंग कर सकते हैं, ये तो औरत है। और इससे पहले बाइबल की हिस्ट्री में कोई ऐसा बयान हमें नहीं मिलता है कि किसी औरत ने खुदा के लोगों को लीड किया हो। उन्होंने कहा गर्चे हम हेल्प करना चाहते हैं और खुदा को हमारी जरूरत है, लेकिन ये तो प्रिंसिपल की बात है, हम कैसे जाएंगे, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो दबोरा है वो एक फीमेल है, वो एक वुमन लीडर है और हम अपने स्ट्रक्चर से अपने इंतजाम से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और आज इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो खिदमत ना करने का बहुत से जो खिदमत ना करने के बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं और वो कहते हैं हम कैसे खिदमत के लिए जा सकते हैं, इस चर्च के साथ ये प्रॉब्लम है, इनकी ये चीज ठीक नहीं, इनकी क्वायर ठीक नहीं है, इनकी फलां चीज ठीक नहीं है, इनका लेंटर ठीक तरह से नहीं पड़ा हुआ, हम खिदमत ना करने के और मदद ना करने के हजारों बहाने हम ढूंढ लेते हैं। और यही प्रॉब्लम जो थी वो रूबन के साथ थी, ठीक है हमें हेल्प करनी चाहिए, खुदा को हमारी जरूरत है, लेकिन हम एक औरत की मदद नहीं कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं ठीक है हमें फलां मिनिस्ट्री की हेल्प करनी चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर खिदमत करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी टीचिंग में ये प्रॉब्लम है, वो तो गैर जुबाने बोलते हैं, वो तो साज बजाते हैं, वो तो हैलेलुया के नारे लगाते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ कैसे खिदमत कर सकते हैं, उनको तो बाहर से पहले से बड़ी एड आती है, उनको तो खुदा ने बहुत कुछ पहले से दिया हुआ है, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं।
یا ان کے ساتھ ہم مل کر خدمت کر سکتے ہیں, اور ایسے بہانے ڈھونڈنے سے ہم خدا کی کالنگ کے لیے, خدا کی خدمت کے لیے, ہم جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تھرو آؤٹ چرچ ہسٹری اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کلیسیا بشارت کرنا بند کر دیتی ہے, کلیسیا ہمیشہ مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے. اور جب بھی آپ بشارت کرنا بند کر دیں گے, اس ملک میں خدمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس وقت کلیسیا پر مصیبت آتی ہے, اور اس وقت منادی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب چرچ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے. اور آج پاکستان کے چرچ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھے اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو, اس کے کلام کو دنیا تک پہنچائے. چرچ کا مقصد یہ ہے کہ گناہگاروں تک پہنچا جائے اور ان کو نجات دی جائے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ چرچ کا مقصد یہ ہے بپتسمہ لیا جائے, پاک شراکت لی جائے, گیت گائے جائیں اور دعا کی جائے اور میسج سنا جائے. یہ کلیسیا کا مقصد ہے. جی نہیں, کلیسیا کا صرف یہ مقصد نہیں بلکہ چرچ کا مقصد یہ ہے ایوینجلزم کریں, بشارت کریں. اور میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہوں گا, جو کلیسیا ایوینجلزم نہیں کرتی ہے وہ ڈیڈ ہے, وہ مردہ ہے. چاہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اور جتنے مرضی بڑے آپ لیڈر ہیں, جو شخص, جو خادم, جو لیڈر, جو چرچ ایوینجلزم نہیں کرتا ہے, ڈیڈ چرچ ہے, ڈیڈ لیڈر ہے. یسوع میں زندگی ہے اور وہ زندگی آگے پھیلتی ہے, وہ زندگی آگے بڑھتی ہے. کوئی اس زندگی کو قید نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں دو بڑے پاور پلانٹ ہیں جن کا دنیا میں کوئی قوت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کوئی ملک, کوئی لا, کوئی تعلیم, کوئی قانون, کوئی نیوکلیئر پلانٹ ان دو قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور وہ دو قوتیں دنیا میں کون سی ہیں؟ میرے یسوع کی صلیب اور میرے یسوع کا خون. یسوع کا خون اور یسوع کی صلیب, دنیا کی کوئی قوت اس کا سامنا نہیں کر سکتی. آمین. ہماری مسیحیت کی بنیاد میں تین چیزیں آتی ہیں, کیلوری, کراس, کروسیفکشن. یسوع کی صلیب, یسوع کی موت, یسوع کی مصلوبیت اور یسوع کا جی اٹھنا. اگر ہم مسیحیت میں سے ان چیزوں کو نکال دیں تو باقی مذہب رہ جاتا ہے, مسیحیت ختم ہو جاتی ہے. پولس کہتا ہے افسوس مجھ پہ اگر میں منادی نہ کروں, افسوس کلیسیا پہ اگر وہ منادی نہ کرے, افسوس خدا کے خادموں پہ اگر وہ منادی نہ کرے. کیونکہ مسیحیت کی بنیاد یسوع مسیح کے مرنے میں اور اس کے جی اٹھنے میں ہے, اور یہی منادی ہے, یہی خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہی خوشخبری ہے, یہی منادی ہے. یسوع میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر مر گیا اور یسوع میرے لیے جی اٹھا, اور اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی زندگی بسر کرو. اگر آپ خدا کے دل کی دھڑکن کی آواز سننا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے کان کو خدا باپ کے دل کے پاس لے کر جائیں گے تو آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی, ایوینجلزم, بشارت, بشارت, بشارت. حکم اعظم کیا ہے؟ جاؤ انجیل پوری دنیا میں جا کر انجیل کی بشارت کرو. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ایوینجلزم, بشارت خدا کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے. جب یسوع کو خدا نے زمین پر بھیجا, اس نے آسمان کے خزانے خالی کر دیے. لیکن آج ہم اپنے خزانے خالی کرنے کے لیے ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کیا کریں اور نہ کریں. جب چندے کی باری آتی ہے ہم اپنی جیب کے نیچے تک جاتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا کوائن ملتا ہے وہ ہم خداوند کو دیتے ہیں. لیکن خدا نے جب انسان کو آسمان سے دیکھا کہ وہ گناہ کی حالت میں ہے, تو خدا نے سب سے چھوٹی چیز نہیں بھیجی, اس نے آسمان کے خزانے خالی کر دیے اور اس نے یسوع کو بھیج دیا. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और खुदा की मोहब्बत मुझे मजबूर करती है कि मैं बशारत दूं। खुदा की मोहब्बत ईमानदारों को मजबूर करती है कि वो एवेंजलिज्म करें। बिलीव मी चर्च, अगर आप बशारत नहीं करते हैं आप में खुदा की मोहब्बत नहीं है। आप खुदगर्जी में, शेखी में, लालच में, गुनाह में, आप गंदगी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा की मोहब्बत मुझे कॉन्स्ट्रेन करती है, मुझे मजबूर करती है मैं गुनाहगारों को खुशखबरी सुना। गतसमनी का बाग है और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है और वो दुआ करता है, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आए बाप बड़ी एग्नी में है, बड़ी पेन में है, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उसने रोया में देखा यीशु के सामने एक प्याला है, एक बहुत बड़ा प्याला है और सारी दुनिया के गुनाह उस प्याले में है और आपके गुनाह उस प्याले में है और मेरे गुनाह उस प्याले में है और सारी दुनिया के गुनाह उस प्याले में है। और यीशु ने उस प्याले को देखा, उसने कहा बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं कैसे ये गुनाह का प्याला पी लूं? मैं पाक हूं, मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मैं खुदा हूं, एलोहीम हूं, एदोनाई हूं, यहोवा हूं, इमैनुएल हूं, लाखता हूं, बेगुनाह हूं, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ओ उसकी मोहब्बत ने जो वो आपसे करता है, वो मोहब्बत जो वो मुझसे करता है, उसने मेरे यीशु को मजबूर किया कि वो प्याला पी ले। आए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मैं कैसे गुनाहों का प्याला पी लूं? फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु ने दुनिया के लिए वो प्याला पी लिया, वो गुनाह उसने अपने अंदर ले लिया, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो मेरी खातर गुनाह बन गया। और जब गुनाह उसके अंदर गया, वो सजा उसके अंदर गई तो उसका पसीना खून की बूंदों की इमारत निकलने लगा। एक करब, एक दुख, एक अजियत उसके अंदर थी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उसको मजबूर किया कि वो गुनाहों का प्याला पी ले। आपके लिए, मेरे लिए उसने वो प्याला पी लिया और उसने पूरी दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त कर दिया। मैं कैसे अंजील सुनाए बगैर बाज रह सकता हूं? अंजील से मैं बाज रह सकता हूं? मेरे यीशु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है दुनिया के लिए। मसीहत मजहब नहीं बल्कि मेरे यीशु की मोहब्बत को बयान करती है। अफसोस उन ईमानदारों पे जो आज एवेंजलिज्म नहीं करते। अफसोस और रोने का मुकाम है उन ईमानदारों के लिए, उन मसीही लोगों के लिए जो और कामों को अहमियत देते हैं, अपनी जॉब को, अपने पैसे को, अपनी पोजीशन को। आज हम यीशु के लहू से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बदकिस्मत है वो लोग जिनको अभी तक यीशु का मुकाशवा नहीं मिला है। आए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मैं इतना प्यार करता हूं दुनिया से कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आज खुदावन से कहें, खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी, आज ही मुझे ले, मैं शर्मिंदा हूं खुदावन कि आज तक मैंने तेरी कॉलिंग को रद्द किया है, मैं सुस्ती में हूं, मैं गुनाह में हूं, मैं गुलाजत में हूं, मैं खुदावन पीछे हूं, आज मुझे ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हजूरी हमारे दरमियान है, उसकी आग हमारे दरमियान है, पेंटिकॉस्ट हमारे दरमियान है। आज कुर्बानी दें और आग आएगी आपकी जिंदगी पे, पेंटिकॉस्ट की आग आज बाला खाने पे आएगी, रोहल कुदस की आग आएगी, मेरे यीशु की आग आएगी। आज फैसला करें, खुदावन मैं तेरी खिदमत करूंगा, मुझे ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मांगे आज, तौबा करें, इकरार करें, अपने आप को उंडेल दें आज उसके सामने। सब ऊंची आवाज में दुआ करें, इकरार करें, हालेलुया हालेलुया, खुदावन मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तेरी आवाज को पीछे छोड़ दिया। भाई सुहेल से हम बुलाएंगे और दुआ में हमें लीड करेंगे। सब दुआ करें, खुदावंद आज मुझे ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल।
मैंने कहा चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे, हाथों को उठाएं और खुदावंद से रूह कुदस की आग को मांगे। रूह कुदस से कहें, रूह कुदस जला दे मेरी सारी तारीकी को, मेरी गंदगी को जला दे और आज मुझे बहाल कर। और जब अपने आप को उसके लिए खोल देंगे तो मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी नहीं हो जाएगी। वह आज आपको नया बनाना चाहता है। छोड़े आप अपने उस मकाम को, उस जगह को छोड़ दें और खुदा की आवाज को सुने। वो आज आपसे मुखातब है, उसने आपसे कलाम किया है, वो आपको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरी आवाज के लिए। खुदा तू लोगों से बोला है, तूने अपने कलाम के वसीला से अब आप में ईमान रखता हूं लोगों के बंदरों को भी तोड़ा है, क्योंकि तेरा कलाम आग है और जब आग आती है तो बंधन जलते हैं, लोग निजात पाते हैं और आजादी हासिल करते हैं। आज मेरे भाइयों को, कलीसिया को, आए खुदा उसकी सारी निजात को जला दे अपनी आग से, गर्मा दे अपनी आग से, ताकि खुदा आज का दिन तेरे लोग बेदार होके जाए, तेरे लोग आए खुदा और रूह का घर मसल लेके जाए, तेरे लोग आए खुदा फिर से आए खुदा ताजगी हासिल करें। और तू जिंदा खुदा है ऐ बाप, ऐ यीशु तू अपने लोगों को ताजा करता है, तू अपने लोगों को फिर से बहाल करता है। आज अपने लोगों को बहाल कर, बहाल कर, जिंदगियों को तब्दील कर, अपने बिजनेस को, अपने काम को ज्यादा अहमियत ना दें, बल्कि है यीशु तुझे अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, हर काम में तुझे अवलियत दें। काश को खुदा कलीसिया पाकिस्तान, तेरे लोग, तेरे खादिम आए को खुदा सबसे पहले तुझे अहमियत दे और बशारत के लिए और तेरे कलाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दे और कहे आए खुदा, खुदा फरमा, आए यीशु फरमा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने जिंदगी को झंझोड़ा है, तूने अपने खादम को हमारे लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया है। तेरे खादम के लिए बरकत, उसके खानदान के लिए बरकत और सेहत सलामती की दुआ करते हैं। तेरे खादम पर तेरा मुकाशवा और ज्यादा खुल जाए, जहां जहां तेरा खादम जाता है उसको अपने जलाल से, अपनी कुदरत से भरकर इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो, तेरा जलाल, पास्टर सालम इस कोर्स को गाया जाए, तेरा जलाल मसा तेरा। हालेलुया, जीसस हालेलुया। वह आज आपके बंधनों को तोड़ डालेगा, आज आप आजाद होके जाएंगे, आज आप बहाल होके जाएंगे। तेरा शुक्र हो, हालेलुया। जो भी रुकावट है, अपनी रुकावट को आज यीशु मसीह के नाम में दूर करें।
खुदावंदा इस जगह पर भड़ा दे और फजल कर। खुदावंदा
और सब गए हालेलुया
شكرا